अक्सर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहां एक तरह की उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल सटीक होगा, मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह।
हाँ, एकदम सीधा हिसाब होता है वहां।
बिल्कुल, अगर हाथ की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रही समस्या।
सही कहा। इस एक्सरे वाले उदाहरण को ही ले लीजिए ना। शरीर की बीमारियों को पकड़ना काफी सीधा विज्ञान है। या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। स्क्रीन पर सब साफ नजर आ जाता है।
हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और इससे एक तसल्ली भी मिलती है ना, इंसानी फितरत है कि हम चीजों को देखना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग खानों में बांटना चाहते हैं।
बिल्कुल, लेबल लगाना चाहते हैं हम हर चीज पर।
सही बात है, लेकिन फिर जब हम इंसान के मानसिक स्वास्थ्य, उसकी भावनाओं और अंदरूनी उथल पुथल की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है।
एकदम बंद हो जाती है।
हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो सच कहा जाए तो बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ है। भावनाओं का कोई सीधा एक्सरे नहीं होता और ना ही चिंता या घबराहट का कोई थर्मामीटर होता है कि नाप लिया जाए।
और यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा बेबस महसूस करता है, क्योंकि जब समस्या दिखाई ही नहीं देती तो उसका इलाज कैसे किया जाए।
हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए आज का ये स्रोत जो हमारा मटेरियल है वो इतना महत्वपूर्ण है। आज के इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ आज के इस चिंताग्रस्त और तनावपूर्ण युग में हमारी मानसिक शांति और विचारों की दिशा के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शिका बन सकता है।
बहुत ही सटीक बात कही।
आज हम डॉक्टर मैथ्यू एस हामन के एक विस्तृत विश्लेषण पर बात कर रहे हैं जो फिलिपियंस के नाम पत्र, विशेषकर अध्याय 4 श्लोक 1 से 9 पर आधारित है। तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं।
जरूर। देखिए, डॉक्टर हारमन जिस हिस्से की बात कर रहे हैं ना, वो किसी शांत पहाड़ की चोटी पर बैठकर लिखा गया कोई आदर्शवादी दर्शन नहीं है।
अच्छा,
नहीं, ये एक बहुत ही कठोर और खौफनाक वास्तविकता के बीच से निकला हुआ संदेश है।
और यहीं से ना सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें कि सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत एक आदेश से होती है। पॉल कहते हैं, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो।
हमेशा आनंदित रहो जी।
अब अगर हम इसके पीछे की कहानी देखें तो पॉल ये खत रोम में नजरबंद रहते हुए लिख रहे हैं, यानी हाउस अरेस्ट में है वो।
हाँ, और वो अपने मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। नतीजा कुछ भी हो सकता है।
बिल्कुल, यहां तक कि फांसी भी। मौत सामने खड़ी है, आजादी छिन चुकी है और वो कह रहे हैं हमेशा खुश रहो।
ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना।
बहुत अजीब। आजकल की दुनिया में अगर कोई बड़ी मुसीबत में हो, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई हो या घर छिन गया हो, और उसे कोई आकर कहे कि हमेशा खुश रहो, तो ये सीधा सीधा टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा लगता है।
सही बात है।
ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई इंसान की असली परेशानी का मजाक उड़ा रहा हो।
यहां जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि पॉल का ये आदेश उस सतही खुशी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में बिल्कुल नहीं है जिसे हम आज के सोशल मीडिया वाले समाज में देखते हैं।
हाँ, वो फेक स्माइल वाली बात नहीं है।
एकदम ही। डॉक्टर हरमन बहुत गहराई से समझाते हैं कि पॉल ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी परिस्थितियों पर खुश रहो। वो कह रहे हैं प्रभु में आनंदित रहो। खुशी का स्रोत बाहर की परिस्थितियां हैं ही नहीं।
अच्छा, मतलब ये आनंद इस बात पर निर्भर नहीं है कि बैंक में कितने पैसे हैं या जीवन कितना आसान चल रहा है।
बिल्कुल। डॉक्टर हरमन परिस्थितियों की तुलना खिसकती हुई रेत से करते हैं। अगर इंसान अपनी खुशी की नींव इस रेत पर रखेगा तो वो हमेशा दगमगाता रहेगा।
रेत की तरह फिसल जाएगी खुशी।
हाँ, इसके विपरीत यहां एक स्थिर एंकर की बात की गई है, एक ऐसा बिंदु जो कभी नहीं बदलता। डॉक्टर हरमन एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य उजागर करते हैं कि खुशी और दुख एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं हैं।
ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है,
है ना?
इंसान के दिमाग में ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि अगर एक चालू है तो दूसरा बंद ही होगा। एक इंसान गहरे दुख के बीच भी, जैसे किसी प्रियजन को खोने के अथाह दर्द में भी, इस आध्यात्मिक आनंद को महसूस कर सकता है।
क्योंकि वो दो अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं।
सही कहा।
क्योंकि यह आनंद इस विश्वास से आता है कि वो एक ऐसी शक्ति से जुड़ा है जो हर परिस्थिति से बड़ी है।
ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि इंसान एक ही समय में बाहर से रो सकता है और अंदर से एक ठहराव महसूस कर सकता है।
बिल्कुल।
लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि अंदर की खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, तो एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, इस अंदरूनी ठहराव का असर हमारे बाहरी बर्ताव पर कैसे पड़ता है?
हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखेगा?
एग्जैक्टली। खासकर उन लोगों के साथ जो लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे हों। और ये चीज हमें समझदारी या सौम्यता यानी जेंटलनेस के विचार की ओर ले जाती है। पत्र में कहा गया है कि इस सौम्यता को सब पर जाहिर होने दो।
ये सौम्यता असल में उसी अंदरूनी ठहराव का बाहरी रूप है। डॉक्टर हार्मन इस शब्द जेंटलनेस की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि इसका मतलब हर छोटे छोटे नियम या अपने हर एक हक के लिए अडियल ना होना है,
हर बात पर जिद ना करना।
हाँ,
ये विवादों को शांत करने यानी डिफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पत्र में इसका एक बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी संदर्भ है। उस समय यूडिया और सिंटीचे नाम की दो महिलाओं के बीच कोई गहरा विवाद चल रहा था।
और जहां तक मुझे याद है, ये दोनों कोई ऑर्डिनरी यानी साधारण महिलाएं नहीं थीं। वो समुदाय की महत्वपूर्ण नेता थीं। यही तो सबसे बड़ी समस्या थी। उनका झगड़ा पूरे समुदाय को बांट सकता था। पॉल उनके बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि जब इंसान का अहंकार और अधिकार टकराते हैं, तो सौम्यता ही वो पुल है जो रिश्ते को टूटने से बचाती है।
लेकिन यहाँ एक सवाल है, आज के युग में जहाँ हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तीखे बयानों को बहुत सराहा जाता है,
वायरल हो जाते हैं ऐसे बयान।
हाँ, और जो जितना जोर से चिल्लाता है उसे उतना ही मजबूत माना जाता है। ऐसे में क्या सौम्य होने का मतलब कमजोर होना नहीं है? लोग तो इसे कायरता मान सकते हैं।
देखिए, सौम्यता को कायरता समझना एक बहुत बड़ी भूल है। इसका मतलब है अपने विश्वास पर मजबूती से खड़े रहना, लेकिन साथ ही एक ऐसा स्वभाव रखना जो दूसरों के साथ कठोर या हिंसक ना हो।
यानी मजबूत होना पर अग्रेसिवली नहीं।
बिल्कुल। और इस सौम्यता को बनाए रखने का जो मूल कारण बताया गया है ना, वो इसकी पूरी रूपरेखा बदल देता है। कारण बताया गया है, प्रभु निकट है, द लॉर्ड इज एट हैंड। डॉक्टर हार्मन स्पष्ट करते हैं कि ये वाक्य जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है।
अस्पष्ट रखा गया, तो इस अस्पष्टता के पीछे क्या तंत्र या मैकेनिज्म काम कर रहा है?
इसके दो अर्थ निकलते हैं और दोनों ही इंसान के मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित करते हैं। पहला, समय के संदर्भ में कि प्रभु की वापसी जल्द होने वाली है, यानी समय बहुत कम है।
अच्छा, और दूसरा?
दूसरा, स्थान के संदर्भ में कि प्रभु अभी इसी वक्त हमारे आसपास मौजूद हैं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को ये पता हो कि कल दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश ठीक उसके बगल में खड़ा है,
तो वो फालतू बातों पर नहीं लड़ेगा।
सर्वोच्च सत्ता की निकटता का एहसास होता है ना, तो विवाद बहुत छोटे और अर्थहीन लगने लगते हैं।
वाह, ये एक बहुत ही सटीक मानसिक चित्र है। लेकिन सच कहूं तो दूसरों के साथ सौम्य व्यवहार करना या अपने अहंकार को किनारे रखना तब असंभव सा हो जाता है जब इंसान खुद अंदर से चिंताओं के पहाड़ तले दबा हो।
ये तो इंसानी फितरत है।
हाँ, जब दिमाग सर्वाइवल मोड में हो तो इंसान सौम्य नहीं रह सकता, वो बस खुद को बचाने की कोशिश करता है।
सही बात है।
शायद इसीलिए अगली ही सांस में सीधे मानसिक चिंता पर वार किया गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये सुनकर मैथ्यू 6 में यीशु की शिक्षाओं की याद आती है। लेकिन देखिए, चिंता ना करना कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है।
बिल्कुल, मुश्किल है। और डॉक्टर हार्मन भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि ये शायद पालन करने के लिए सबसे कठिन आदेशों में से एक है।
हमारा दिमाग तो बना ही उस तरह से है।
हाँ, मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खतरों को भांपने और चिंता करने के लिए ही बना है। एवोल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन पॉल सिर्फ ये नहीं कहते कि चिंता मत करो और बात खत्म कर दें। वो इसके पीछे का एक ठोस इलाज भी बताते हैं,
एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, राइट?
हाँ, वो कहते हैं कि हर एक बात में अपनी मांगे, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने रखो।
यहाँ मैं एक तुलना करना चाहूंगी। हाँ। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग प्रार्थना को एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले यंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं।
अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है ये,
है ना। इसे दीवार पर टांग कर छोड़ देते हैं और केवल तब उठाते हैं, यानी इसे आखिरी विकल्प मानते हैं जब जिंदगी के कमरे में सब कुछ धू धू कर जल रहा हो।
इस तुलना से बेहतर शायद ही कोई और उदाहरण हो। डॉक्टर हार्मन बिल्कुल यही बात समझाते हैं कि प्रार्थना को आखिरी विकल्प यानी लास्ट रिजॉर्ट नहीं बल्कि प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए।
लेकिन लोग सोचते हैं कि
हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में इतने युद्ध चल रहे हैं, भुखमरी है, तो मेरी नौकरी या मेरे रोजमर्रा के तनाव जैसी छोटी सी बात पर ईश्वर क्यों ध्यान देगा।
बिल्कुल,
लेकिन स्रोत में साफ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो लेकिन हर एक बात में। इसका मतलब है कि कोई भी बात इतनी छोटी नहीं है कि उसे ईश्वर के सामने ना लाया जा सके।
लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर ईश्वर सर्वज्ञ है यानी ओमनिशेंट है, वो तो पहले से सब जानता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है।
हाँ, उसे तो सब पता है,
तो फिर शब्दों में बांध कर सब कुछ बताने की क्या जरूरत है?
क्योंकि प्रार्थना केवल सूचना देने का साधन नहीं है। ईश्वर कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें बस डेटा फीड करना है।
सही बात है,
ये एक रिश्ता बनाने के बारे में है। जैसे एक पिता जानता है कि उसका बच्चा किस बात से डरा हुआ है, फिर भी वो चाहता है कि बच्चा आकर अपनी भावनाएं व्यक्त करे। और यहां डॉक्टर हार्मन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं, प्रार्थना कोई जादू की छड़ी या बैंडेड नहीं है कि एक बार लगा लिया और घाव हमेशा के लिए भर गया।
बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि एक बार आंख बंद करके प्रार्थना की और फिर कभी बैंक की EMI या नौकरी छूटने की टेंशन दिमाग में आई ही नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस। इंसान को बार बार अपनी चिंताओं को लेकर वापस आना पड़ता है,
यानी ये एक डेली प्रैक्टिस की तरह है।
हाँ, और अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बार बार अपनी चिंताओं को एक बड़ी सत्ता को सौंपने से दिमाग से वो बोझ कम होता है, जिस कॉग्निटिव लोड कहते हैं।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब चिंताओं को इस तरह सौंपा जाता है तो उसका परिणाम क्या बताया गया है? परिणाम है ईश्वर की शांति, द पीस ऑफ गॉड।
बहुत ही खूबसूरत शब्द है ये।
लेकिन आधुनिक दुनिया में इस शांति शब्द को सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। आज लोग इसे एक कंपास या थर्मोमीटर की तरह इस्तेमाल करते हैं।
वो कैसे?
कई बार लोग ना कोई बड़ा और सही फैसला लेने से सिर्फ इसीलिए बचते हैं क्योंकि वो कहते हैं मुझे अंदर से ना शांति महसूस नहीं हो रही है। जैसे अगर शांति महसूस नहीं हो रही तो फैसला पक्का गलत ही होगा।
सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं है या पेट में उथल पुथल का ना होना नहीं है,
तो फिर क्या है?
ये शांति वास्तव में एक वास्तुनिष्ठ वास्तविकता है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है।
वास्तुनिष्ठ वास्तविकता, इसे थोड़ा और सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है?
इसका सीधा अर्थ यह है कि ये शांति उस अंतिम उद्धार यानी एस्केटोलॉजिकल सेल्वेशन और ईश्वर के साथ सुधरे हुए रिश्ते से आती है। मतलब इंसान को ये पता है कि अंत में जीत तय है और उसका वजूद सुरक्षित है।
अच्छा, एक गहरा अश्योरेंस है ये।
बिल्कुल, बाइबल कभी भी इस शांति को निर्णय लेने का पैमाना नहीं मानती। डॉक्टर हार्मन साफ कहते हैं कि कई बार इंसान बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा होता है, वही कर रहा होता है जो उसे करना चाहिए।
हाँ,
लेकिन फिर भी उसके अंदर भारी उथल पुथल, घबराहट और रातों की नींद उड़ी हुई हो सकती है।
ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर सही काम करते हुए डर लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि रास्ता गलत है या विश्वास कमजोर है।
एकदम सही कहा। पत्र में एक सैन्य शब्दावली यानी मिलिट्री टर्म का उपयोग किया गया है। कहा गया है कि ये शांति हमारे दिलों और दिमागों की पहरेदारी करती है, गार्ड्स।
जैसे कोई गार्ड खड़ा हो।
हाँ, जैसे कोई संतरी या गार्ड किसी किले के दरवाजे पर हथियार लेकर खड़ा हो। दिमाग वो किला है जिस पर चिंताओं का हमला हो रहा है और ये शांति उस किले की सुरक्षा करती है। ये सारी समझ से परे है। तार्किक रूप से ऐसे भयंकर समय में इंसान को टूटकर बिखर जाना चाहिए,
लेकिन वो नहीं टूटता।
नहीं, वो टिका रहता है क्योंकि पहरेदार मौजूद है।
तो अगर ये शांति सिर्फ एक भावना नहीं है और उथल पुथल के बावजूद हम सुरक्षित रह सकते हैं, तो सवाल ये है कि मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए इंसान खुद क्या कर सकता है?
हाँ, अपना रोल क्या है इसमें?
एग्जैक्टली, किले का पहरेदार तो बाहर है, लेकिन किले के अंदर के विचारों का क्या? यहीं पर विचारों को सही दिशा देने की बात आती है, जो आज के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT के सिद्धांतों से बहुत मेल खाता है।
बहुत ज्यादा मेल खाता है।
एक पूरी सूची दी गई है, उन बातों पर विचार करो जो सत्य हों, आदरणीय हों, न्यायसंगत हों, पवित्र, सुहावनी, सराहनीय और उत्कृष्ट हों।
देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही गहरा है। डॉक्टर हामन कहते हैं कि इंसान सिर्फ विचारों का एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता या हेल्पलेस रिसिपिएंट नहीं है।
इंसान हेल्पलेस नहीं है अपने विचारों के सामने।
बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि दिमाग में जो भी विचार आया इंसान को उसका गुलाम बनना ही पड़ेगा। विचारों को दिशा दी जा सकती है, अगर गलत, नकारात्मक या डराने वाले विचारों को चुनौती ना दी जाए ना।
हाँ,
तो वो जड़ जमा लेते हैं और पूरे मानसिक स्वास्थ्य को दीमक की तरह खा जाते हैं।
इसका मतलब है कि दिमाग को एक फिल्टर देना होगा। जो विचार इस सूची सत्य, आदरणीय, न्याय संगत के फिल्टर से पास नहीं होता, उसे बाहर निकालना होगा।
एकदम सही। और डॉक्टर हरमन ये भी बताते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। स्रोत के अंत में लिखा है कि जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो।
यानी बस थ्योरी में नहीं रखना है।
हाँ, अभ्यास का अर्थ है किसी चीज को बार बार दोहराना, रेपिटेशन। जब तक इन विचारों को आचरण में नहीं लाया जाएगा, तब तक न्यूरल पाथवेज नहीं बदलेंगे।
तो आखिर इस सब का क्या अर्थ निकलता है? इस पूरे प्राचीन ज्ञान को आज के इस भागा दौड़ भरे जीवन में कैसे उतारा जाए?
डॉक्टर हारमन एक बहुत ही व्यवहारिक कसरत, एक मेंटल एक्सरसाइज का सुझाव देते हैं, जिसे कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है।
अच्छा, वो क्या है?
जो सूची फिलिपियंस 4:8 में दी गई है, जैसे सत्य, सुहावना, उत्कृष्ट, हर दिन इनमें से हर एक गुणवत्ता के लिए अपने आसपास किसी एक वास्तविक चीज या घटना की पहचान करनी है।
ओके।
और फिर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना है। जैसे खुद से पूछना कि आज मैंने क्या सत्य देखा, आज क्या न्याय संगत हुआ। ये दिमाग को उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकालकर एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक बहुत ठोस तरीका है।
ये एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला मॉडल है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देखते हैं कि ये प्राचीन पत्र आज के इस एंजाइटी से भरे युग में मानसिक स्थिरता के लिए एक मास्टर क्लास है।
बेशक।
ये सिखाता है कि हमारी शांति हमारी परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। ये सिखाता है कि प्रार्थना कोई आखिरी विकल्प नहीं, बल्कि एक निरंतर संवाद है जो हमारे मानसिक बोझ को कम करता है।
और सबसे बड़ी बात, ये सिखाता है कि इंसान अपने विचारों का शिकार नहीं है, बल्कि वो उन्हें सही दिशा देकर अपनी मानसिक किलेबंदी कर सकता है।
सही बात है। इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार उभर कर आता है जिस पर हमने सीधे तौर पर बात तो नहीं की, लेकिन जो इस पूरे स्रोत की आत्मा में बसा हुआ है। जरा उस संदर्भ पर वापस चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी।
हाँ, जेल वाले संदर्भ पर।
एक व्यक्ति जो रोम में एक जेल नुमा घर में कैद है, जिसकी मौत की सजा किसी भी पल आ सकती है, जिसके आसपास सिर्फ पत्थर की दीवारें और पहरेदार हैं, और वो अपनी कलम से लिख रहा है कि अपना ध्यान उन चीजों पर लगाओ जो सुंदर है, उत्कृष्ट है और सराहनीय है।
सोचना भी मुश्किल है ये उस परिस्थिति में।
वही ना, आज के समय में हम अक्सर अपने जीवन को दो अलग अलग डब्बों में बांटते हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक।
बिल्कुल।
हम सोचते हैं कि शांति सिर्फ किसी धार्मिक स्थल पर मिलेगी या सुंदर और उत्कृष्ट चीजें सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही हो सकती हैं। लेकिन क्या इस उथल पुथल भरी दुनिया में सबसे बड़ी जीत यही नहीं है कि हम अपनी रोजमर्रा की जेल जैसी परिस्थितियों में भी अपने आसपास की साधारण दुनिया में, प्रकृति में या किसी अजनबी की मुस्कान में उस उत्कृष्टता को देख सके?
बहुत ही खूबसूरत है।
हो सकता है उस जेल में पॉल के लिए वो सुंदर चीज किसी खिड़की से आती हुई धूप की एक किरण रही हो। साधारण चीजों में ईश्वरीय झलक देखना ही शायद उस शांति का असली रहस्य है।
छाई और उत्कृष्टता को ढूंढ निकालने की क्षमता ही शायद सबसे बड़ी मानसिक आजादी है।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को एकांत में गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हम अपने विचारों के पहरेदार खुद बन रहे हैं या हम उन्हें बेकाबू छोड़ रहे हैं? क्या हम अपनी रोजमर्रा की उलझनों में उस साधारण सुंदरता को देखने से चूक तो नहीं रहे? आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। विचार करते रहिए।